بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. تو دیکھو، مسائل شب برات پر بات چل رہی تھی، ساری فضیلتیں ہمارے سامنے آ گئی. اب کن گناہوں سے خاص کر کے بچنا ہے، وہ گناہ جو اس رات کے اندر بھی ہماری مغفرت نہیں ہوتی، اس کے بارے میں بات چل رہی تھی. ایک تو مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، دوسرا کینہ دل میں غصہ رکھنے والے کی، تیسرا قطع رحمی کرنے والے کی، اور چوتھا ہے ٹخنوں سے نیچے کپڑے کا استعمال. یہ مردوں کے لیے ہے، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا لنگی وغیرہ پہننا، یا بہت لمبی آستین بنانا، یا بہت لمبا شملہ صافہ میں جو پیچھے کمر کی جانب چھوڑا جاتا ہے، یعنی امامہ باندھے تو پیچھے جو کپڑا لٹکتا ہے وہ لمبا چھوڑنا. حدیث شریف بخاری مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر رحمت نہ فرمائیں گا اللہ تعالی اس شخص کی طرف جو اپنی ازار پاجامہ لنگی وغیرہ کو اکڑ کی راہ سے نیچے لٹکائے. دوسرا، حدیث میں اس لٹکانے کی حد آئی ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازار ٹخنوں سے نیچا ہو وہ دوزخ میں ہے. ٹخنوں سے نیچا، تو آج عورتوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر ہو تو ان کے لیے پکڑ ہے، ان کو تو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ ہونا چاہیے، یا جو بھی لباس ہو ان کو ٹخنوں کا چھپانا ضروری ہے، اور مردوں کے لیے ٹخنوں کا ظاہر کرنا ضروری ہے. ابھی آج دیکھو لباس الٹا ہو گیا، مردوں کے ہر ایک ان کا جو ازار ہو، پینٹ ہو، سب ٹخنوں سے نیچے ہے، اور عورتوں کا اونچا ہو گیا، فیشن ہو گیا. اس لیے یاد رکھے، عورتوں کے لیے تو ٹخنوں سے نیچا ان کے لیے ضروری ہے، یہ نیکی ہے، اور مردوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر یہ نیکی ہے، اور نیچے تو وہ ان کے لیے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنا غصے ہوتے. تیسری حدیث میں ہے، دوسرے لباسوں میں بھی اس کا حرام ہونا مذکور ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسبال یعنی دراز کرنا اور حد سے بڑھانا ازار میں بھی ہوتا ہے، اور کرتے میں بھی اور امامہ میں بھی. امامہ میں شملہ لمبا کر دینا، کرتے میں بھی ٹخنوں سے نیچے چلے جانا. جو شخص ان میں سے کسی لباس کو تکبر کی راہ سے حد سے زیادہ بڑھائے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہ کریں گے قیامت کے دن. اور اس کی تائید، اس کو یہ ابو داؤد کی اور نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس کی تائید کرنے والی ایک اور حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے کپڑے کو اتنا کر بڑھائے گا، اکڑ کر، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف قیامت کے روز نظر رحمت نہ فرمائے گا. امام بخاری نے اس کو روایت کی. اس میں مطلقاً کپڑے کو فرمایا، جس میں تمام کپڑے آ گئے، جس میں ازار کے بڑھانے کی حد تو حدیث میں آئی گئی ہے. دوسرے لباس اور کپڑوں کے متعلق علماء محققین نے فرمایا کہ آستین کا انگلیوں سے آگے بڑھانا، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور امامہ جو پہنتے اس کا شملے کا نصف کمر سے نیچے ہونا، یہ سب اسبال یعنی ممنوع ہے. بہت سارے لوگوں کا امامے کا جو پچھلا ہے نا، وہ بالکل لمبا ہوتا ہے، کمر تک تو ٹھیک ہے تھوڑی، ورنہ اس کے نیچے وہ سنت کے خلاف ہے. خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اول تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم تکبر نہیں کرتے. اچھا، پھر ایسا کیوں کرتے ہو؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں، بعض ٹیڑے سمجھ والے، کہ حدیث میں تو اس کی ممانعت آئی ہے تکبر کی وجہ سے، کہ اگر تکبر کے لیے نہ پہنا ہو، ویسے پہنا ہو تو اجازت ہے، یوں کہتے. تو کہتے ہیں کہ ہم تو تکبر نہیں کرتے، اس لیے ہمارے لیے جائز ہے. اب جو تکبر کہتے ہیں کہ ہم تکبر نہیں کرتے، اس کا دعویٰ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے. کہتا ہم تو تکبر نہیں کرتے، اس لیے ہمارے لیے جائز ہے. تو اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تکبر نہیں کرتے، یہی اس کے تکبر کرنے کی علامت ہے. बाज कज फहम यूं कहते हैं कि खूब समझ लेना चाहिए कि अव्वल तो ये कहना गलत है कि हम तकब्बुर नहीं करते। अच्छा फिर ऐसा क्यों करते हो? अगर नहीं करते फिर ऐसा क्यों करते? फिर क्यों लटकाते हो? ऊंचा कर दो, अगर नहीं करते तो ऊंचा कर दो। वजह मसनून क्यों इख्तियार नहीं करते? सुन्नत इख्तियार करो। इसके इख्तियार करने में दिल क्यों तंग होता है? ऊंचे पैंचों को हकीर क्यों जानते हो? अगर ये तकब्बुर नहीं है तो और क्या है? उसको ऊंचा कर लो। दूसरी एक हदीस शरीफ में जो तकब्बुर की कैद आई है, यह क्या जरूरी है कि कैद एहतराजी हो? मुमकिन है कैद वाकई हो, क्योंकि अक्सर लोग उसी कस्त से करते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कैद जिक्र फरमाई और ममनू वैसे भी है। वो असल में उन लोगों के लिए जो ऊंचा पहनने के आदी है टखनों से, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से उनका रबड़ हो गया या पाजामा नीचे उतर गया या किसी ने लंबा सिल दिया, उन्होंने ऊंचा तो किया था लेकिन चलते चलते नीचे उतर गया, तो अब इनका जो नीचे उतर गया और वो भूल गए, तो ये इनका तकब्बुर की राह से नहीं है। ये असल में उन लोगों के लिए माफ है कि जिनका पाजामा नाप सही दिया था लेकिन लंबा हो, उन्होंने ऊपर से कर दिया। वो पहनने की आदत टखनों से ऊपर की ही है, लेकिन वो किसी मजबूरी की वजह से वो चलते चलते नीचे आ गया, तो अब वो भूल गए। अब लोग समझते देखो इनका टखनों से नीचे पाजामा है, हाँ पहन ऊंचा रख कर दो, तो ये है। तो अब ऐसे लोगों को हम तकब्बुर नहीं कह सकते, इसलिए कि इनका तकब्बुर की वजह से नहीं है, जानबूझकर नहीं है, इनका तो ऊपर ही है लेकिन नीचे उतर गया। तो ऐसे लोगों को फिर वो उस हदीस में दाखिल, उस वईद में दाखिल नहीं होते। ये वो लोग हैं जो जानबूझकर नीचा पहनते हैं जी, उनके लिए ऊंचा पहनना शर्म की बात है, तो गोया सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो चुनांचे दूसरे हदीस में जिसमें टखनों की हद का जिक्र है, उसमें ये कैद तकब्बुर की मजकूर नहीं, मतलब का निर्शाद है कि जिससे यह साबित हुआ कि ख्वाह तकब्बुर हो या न हो, हर हाल में ममनू है। हाँ, तकब्बुर में एक गुना तकब्बुर का और मिलकर मासियत शदीद हो जाएगी, ये दूसरी बात है, और बिला तकब्बुर एक ही गुना है, मगर रहेगी तो सही, बचाव और जवाज की तो सूरत नहीं निकल सकती। अगर कोई कहे कि इस मुतलक को भी हम इसी पर महमूल करेंगे, तो जवाब उसका यह है कि यह अमर उसूल फिका हनफी में बदलील साबित हो चुका है कि मुतलक अपने इतलाक पर रहा करता है, गरज कोई गुंजाइश जवाज की नहीं है, मुतलक अपने इतलाक पर रहता है। बाज लोग तकवा दिखाने के लिए क्या करते, नमाज में पाजामा या पैंट वगैरह को ऊंचा कर देते, बहुत से लोग नमाज में ऊंचा कर देते ऊपर को, हालांकि नमाज से खारिज भी तो गुना है। नमाज से खारिज वो यूं समझते कि नमाज में तो ऊंचा करना चाहिए और नमाज के बाहर नीचा चलेगा, ये गलत है। ये नमाज के अंदर भी, नमाज के बाहर भी, तो नमाज के बाहर भी गुना है, नमाज के अंदर भी रखना गुना है। तो नमाज के अंदर तो ये क्या हुआ, गोया नमाज में तो मुसलमान और नमाज के बाहर निकले तो इस्लाम खत्म। तो नमाज से खारिज भी तो गुनाह से बचना वाजिब है, इस हिले से क्या होता है, बाज लोग पांचे तो लंबे लंबे बनाते हैं मगर बटन टखनों से ऊंचे लगा लेते हैं कि टखनों से ऊपर चूड़िया पड़ी रहती है, बनाया तो है नीचे लेकिन बाजों ने, ये भी एक फैशन है कि उसको ऊपर एक बटन की शक्ल बना तो टखनों से ऊपर डाल दिया, तो वो चूड़िया, वो जुरिया बन जाती है ना। तो याद रखो कि असल गुनाह तो कपड़े का बर्बाद करना है, ख्वाह टखने ढके रहे या खुले रहे, उससे क्या बचा हुआ। और याद रहे कि दर्जी को भी ऐसे कपड़े सीना जायज नहीं है, दर्जी को भी ऐसे कपड़े सीना जायज नहीं है, क्योंकि गुनाह की यानत भी गुनाह है, साफ इनकार कर देना चाहिए। कुछ रिस्क ऐसे ही कपड़े सीने पर मुनहसिर नहीं है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात बताई कि दर्जी को, तो बताओ इसमें तो दर्जी क्या करेगा, वो तो कहेगा ऐसा तो कोई कपड़ा सिलाने वाला है ही नहीं दुनिया में। अल्लाह अकबर। ये तो टखनों से नीचे पाजामा लटकाना है। और एक है कुत्ते का शरी हुक्म। बहुत से लोग कुत्ते रखते हैं, पता नहीं अभी हरे को कुत्ते से क्या मोहब्बत होगी। इंसानों से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, कुत्ते से मोहब्बत है और कुत्ते घरों में रखते हैं। तो मिन जुमला रुसूम के घर में तस्वीरों का लगाना, बहुत से घरों में तस्वीरें लगी बिला जरूरत कुत्तों का रखना है। हदीस शरीफ में एक इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नहीं दाखिल होते फरिश्ते रहमत के जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो। रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। बहुत से अपने घरों में फैशन के तौर पर तस्वीरें लगा लेते, कभी अपनी तस्वीर लगाया, कभी औरों की तस्वीर लगाया, और उसको जरा अच्छा समझा जाता है। देखो तस्वीरें नहीं लगाना चाहिए और रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो तस्वीर बाद मरता तो नहीं लगाते, लेकिन हमारी जो फूको होती है, जो ठेली होती है जिसमें हम मार्केट से सामान लाते, उसमें तस्वीरें होती, तो ऐसी थैलियों को भी घर में किसी बॉक्स में डालकर बंद करना चाहिए, वरना वो उसमें भी फिर फरिश्ते नहीं आते। तो ऐसी चीजें हैं, तो हमें इसलिए अपने घरों के अंदर तस्वीरों से बचना चाहिए। ऐसी तस्वीरें लटकी है तो उस दिन उस रात में उस घर में फरिश्ते नहीं आते। और अगर कुत्ता हो तो कुत्ता बिला जरूरत रखने की इजाजत भी नहीं है। पैसा मुझे दे दे, हाँ, पर पैसे में तस्वीर है तो वो निकालने के बजाय मुझे दे देना। जी जी, तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबसे ज्यादा अजाब अल्लाह ताला के नजदीक तस्वीर बनाने वालों को होगा। सबसे ज्यादा अजाब, देखो सबसे ज्यादा अजाब अल्लाह ताला के नजदीक तस्वीर बनाने वाले को होगा। अब बताओ इस वक्त हम हर एक इतनी तस्वीर बनाते हैं, उस तस्वीर को हराम होना भी नहीं समझा जाता, कहते हैं जायज है। आज मोबाइल के जरिए से बताओ हम कितनी तस्वीर लेते रहते हैं। जरा कहीं शादियों में गए तो तस्वीर, जरा कहीं आए तो कोई मेहमान की तस्वीर, और तस्वीर ही तस्वीर लेते रहते हैं। क्या ये तस्वीर लेने वाला इस गुनाह में दाखिल नहीं है? बिल्कुल दाखिल है। क्यों ले रहे हो? आज इसका गुनाह, उसकी हुरमत निकल गई। नमाजी है या तस्वीर ले रहे? आज तो हर एक के घर में, हर एक की जेब में कैमरा है और जब चाहे उठा के तस्वीर ले लेता है। इसलिए जानदार की तस्वीरें नहीं लेना चाहिए। गैर महसूस तरीके से इंसान ले लेता, उसको पता भी नहीं है। यहां तक कि जानवरों की भी, हाँ, सीनरी की तस्वीर ले, कोई दरख्तों की है, कोई सीनरी है, कोई आसमान की है, कोई गार्डन की है, तो वो अलग बात है। बाकी उसके अलावा जानवरों की, खाली इंसानों की नहीं, जानवरों की भी तस्वीरें नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि तस्वीर मुसव्विर के अंदर आ जाएगा, तस्वीर बनाने वाले की तरफ। हदीस शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बज्जूस तीन गरज के कुत्ता पाले, एक तो मवेशी की हिफाजत, जानवरों की, यानी अपने पास जो जानवर है, बकरिया है और वो है, तो उसकी हिफाजत के लिए इंसान कोई कुत्ता रखता है तो ठीक है, दूसरा शिकार करने के लिए रखा, और तीसरा घर या खेत की हिफाजत के लिए। तो इन तीन चीजें के लिए अगर कुत्ता पाले तो इजाजत है उसके, वरना आज लोग घरों में रखते हैं, बस बोले कुत्ते से जरा अच्छा लगता है। तो अब बताओ उनका दिमाग कितना खराब है, उनके पास टाइम कहां से आता है कि कुत्ते को पाले और कुत्ते को भी टाइम दे। तो उसके सवाब में हर रोज, तो एक किरात, हदीस में किरात की मकदार ओहद पहाड़ के बराबर कम होता रहेगा। रिवायत को उसको मुस्लिम ने हदीस में, तस्वीर बनाना, तस्वीर रखना बिला जरूरत, कुत्ता पालना, सबका हराम होना साबित हो गया। एक किरात कम। इस जमाने में तहजीब जदीद, मॉडर्न तहजीब, तहजीब जदीद के लवाजिम में से, क्या बोला, क्या मॉडर्न लाइफ, यानी अभी तो बोला है नया नई जिंदगी है, अभी कुछ नया, तो उसके लवाजिमात में से ये दोनों अमर हो गए कि घरों में तस्वीर रखना या तस्वीर खींचना या कुत्ते को रखना, तो ये मॉडर्न गिना जाता है। अगर जो घरों में न रखे तो कहेगा कि बहुत पिछले जहन का है, बैकवर्ड है। जी तो याद रखना, हम उसमें न जावे, बल्कि वही बैकवर्ड है जो तस्वीर रखता है और कुत्ते को रखता है, वही बैकवर्ड है हकीकत में तो, और जो नहीं रखता है वही हकीकत में मॉडर्न है। लेकिन क्या किया जाए, आज दिमागों में ऐसा बिठा दिया गया कि मॉडर्न को बैकवर्ड कर दिया और बैकवर्ड को मॉडर्न कर दिया, इन्होंने जैसा घुमाना चाह हमारे दिमागों को घुमा दिया और हम भी भोले तो घूम गए। फरमाया तस्वीर मकान का जुज का, मकान में तस्वीर न हो तो मकान ही अच्छा नहीं दिखता। और कुत्ता अहलो अयाल यानी घर वालों में एक बच्चा कुत्ता भी हो जाता है, हाँ फैमिली मेंबर हो गया, में दाखिल समझा जाता है। जरा भी दिल को इनकिबास रुकावट और रोक टोक नहीं होती, जरा भी नहीं होती है, फैमिली मेंबर हो जाता है, बेधड़क दोनों चीजें बरती जाती है। जी बाज लोगों की अकलों पर इस कदर सुस्ती का गलबा है कि कुत्ते के औसाफ हमीदा बयान करके, यानी उसके अंदर की अच्छाइयां बयान करके मुमानियत की वजह दरियाफ्त करते हैं कि भाई इसके अंदर तो इतने अच्छे अच्छे सिफात हैं तो उसको क्यों मना करते हो। लो ये वही आ गया कयामत की निशानियां, कि वो तुमको समझाएंगे, तुम जब समझाने जाओगे ना उनको, तो वो बजाय कबूल करने के वो तुमको समझाने बैठ जाएंगे कि नहीं हमारी तो समझ में आता ही नहीं है, ये रखना चाहिए। जी गोया दर पर्दा नऊज़ बिल्ला उस हुक्म शरई के अबस और बेकार और लगव होने की मुद्दे, बोले शरीयत ने ये जो हुक्म दिया है ये हमारे जहन के अतिबार से तो ठीक नहीं है, गोया शरीयत में नुक्स निकालने लग गए। हमने कयामत की जो फितनों का दौर था उसकी निशानियां जो पड़ी थी उसमें एक निशानी ये भी थी कि जब तुम ऐसे लोगों को समझाने जाओगे तो वो आकर क्या कहेंगे ऊपर से कि हमारी सब समझ में तो आता है, ये गलत हुक्म दिया है। नऊज बिल्ला नऊज बिल्ला, गोया अल्लाह ताला का हुक्म को गलत कहने वाले कितने बेवकूफ हो गए। अच्छा फिर उसको लोग अक्लमंद भी समझते हैं जिसने अल्लाह के हुक्म को कहा कि नऊज बिल्ला गलत है, तो उसको उसको मानने वाले ज्यादा होंगे। हाँ ये आदमी है, सही मानों में दिमाग है इसका और सही बात है, और शरीयत को ठुकराने वाले सब हो जाएंगे। अल्लाह, ये बैकवर्ड लोग हैं जो जानते ही नहीं है। बैकवर्ड किस एतबार से आप समझोगे, भाई जमाने जाहिलियत हुजूर के आने से पहले जो चीज थी वही चीज आज आ रही है तो बैकवर्ड नहीं हुआ, मैं इस एतबार से बैकवर्ड कर रहा हूं। और हुजूर जो लेकर आए एक नया इस्लाम लेकर आए हैं वो आज तक है तो फिर वो मॉडर्न हुआ, और उसमें जो आज नई नई चीजें ला रहे कुत्ता पालना तस्वीर रखना, ये हुजूर के पहले का जमाने का था, तो उसको मैं कहता हूं ये बैकवर्ड लोग यही है असल। हाँ लेकिन अभी क्या करें, लोगों के दिमागों में ऐसा आ गया, वो बेचारे सीधे से क्योंकि उस जमाने को पढ़ा ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है, तो उस जमाने की सारी चीज आ रही है। ये जितने इस किस्म के गुनाह है और जिसको कहते हैं हम मॉडर्न कर रहे हैं, ये वो सारे के सारे जमाने जाहिलियत के हैं, तो वो बैकवर्ड हुए। और सही इस्लाम पर चलने वाला ये मॉडर्न है, तो इसलिए कि सारी की सारी चीजें जितनी भी जमाने में आ रही है सब पिछली आ रही है। तो गरज, तो गोया नऊज बिल्ला उस हुक्म शरी की अबस और बेकार और लगव होने की मुद्दई है, अगर सचमच उनके दिलों में ऐसा ख्याल है तो फिर उनको तजदीद ईमान जरूरी हो, तो ईमान से निकल गए। अगर वो ये समझ रहे हैं कि कुत्ते के तो इतने फायदे हैं और इसको तो रखना चाहिए, और नऊज बिल्ला ये जो हुक्म शरी है ये बेकार अगर उन्होंने ऐसी बातें कह दी तो गोया वो इस्लाम से निकल गया, दोबारा उसको ईमान और कलमा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुफरिया बात होगी। वो और बात है कि हुक्म पर अमल नहीं करा लेकिन फजीलत बयान करना और शरीयत के हुक्म पर दलील बयान करना, तो फिर ये ईमान से निकल जाएगा। एक इंसान कुत्ता रखता है तो वो इतना गुनेगार नहीं, ईमान तो है, मुसलमान तो है, लेकिन एक आदमी उस रखने पर कह रहा है कि जायज होना चाहिए और शरीयत जो मना करी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो गया ईमान से गया, ये गया ईमान से। अब बताओ ऐसे लोग कितने हैं, तो उसको तजदीद ईमान की जरूरत है। मुसलमान बनने के बाद अहकाम शरिया की इल्लत ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुसलमान बनने के बाद अब शरीयत ने ये हुक्म क्यों दिया, किस वजह से दिया, हमारे दिमाग में आना चाहिए, फिर हम अमल करेंगे, तो ये बेवकूफ है। फरमाया मुसलमान बनने के बाद अब शरीयत के हुक्म की वजह मत ढूंढो, शरीयत का हुक्म मान लो, ये है इस्लाम। और आज का जाहिल इंसान, बैकवर्ड इंसान क्या कहता है, भाई क्या वजह है, क्यों मना किया है? वो तो मना जैसे पहले नहीं बोलते, बोले खिंजीर इसलिए मना है कि पहले खिंजीर गंदगी खाता था, और आज के जमाने में उसके फार्म है, अच्छी तरह रहता है, तो फिर मना नहीं होना चाहिए। तो ये देखो इल्लत ढूंढ रहे कि खिंजीर को मना क्यों किया था, तो मना इस वजह से किया था, अब वो वजह नहीं है इसलिए मना नहीं होना, जिसका ईमान गया, इसको कहते हैं इल्लत। तो मुसलमान तो वो है कि अहकाम शरीयत के बाद उसकी वजह न ढूंढे किस वजह से मना किया था और ये वजह अभी नहीं है, बल उसको मान लेना चाहिए मुसलमान। और देखो हुकूमत और गवर्नमेंट के कितने अहकाम और कितने कानून ऐसे हैं जो हमारी अकल में नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने उसका इनकार किया? और जाके करो गवर्नमेंट को कि भाई तुमने जो हुक्म और कानून बनाया है उसकी वजह बताओ, और वजह मेरी समझ में नहीं आएगी तो मैं नहीं मानूंगा, तो गवर्नमेंट कहेंगे ठीक है इसको पहले अंदर करो, उसके बाद थोड़ा डंडे पड़ेंगे, उसके बाद वजह बताएंगे। क्यों? वहां तो मान लेते हैं, तो वहां बहुत से कवानीन अहकाम की इल्लत समझ में नहीं आती, फिर भी बेचू और चिरा उनको मानते हैं। तो हाकिम हकीकी अल्लाह ताला है कि अहकाम में फिर क्यों ढूंढते हैं भाई इसकी क्या वजह है? आज जिसको देखो तो वजह ढूंढ रहा है। ये हमारे दिमागों को उन्होंने खराब कर दिया है, बोले जब तक तुम्हारी अकल और समझ में ना आवे तुम्हें उस पर अमल नहीं करना चाहिए। अभी हमारी समझ में कैसे आएगी भाई तस्वीर लेना मना है, अब हमारी अकल में कैसे आएगा? कुत्तों को रखना मना है, अब उसको तुम ढूंढने जाओगे तो समझ में आ ही नहीं सकती, उसको तो बेचू और चिरा मान लेना चाहिए। अगर कोई कहे कि हमारा दिन तो अकल के मुआफिक है, तो उसका जवाब यह है कि अकल के मुआफिक जरूर है, मगर अकल की रसाई और अकल का वहां तक पहुंचना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से मसाइल ऐसे हैं वहां तक हमारी अकल नहीं पहुंच सकती, इसलिए कि दीन हमारा बड़ा और अकल हमारी छोटी। अब इतना बड़ा दीन हमारी अकल में आ ही नहीं सकता, याद रखिए, क्योंकि हमारी अकल छोटी है और अल्लाह का दीन बहुत बड़ा, अल्लाह का हुक्म बहुत बड़ा, अल्लाह के हुक्म के अंदर क्या क्या चीजें हैं, अब हमारा इतना छोटा सा दिमाग अल्लाह के इस हुक्म को नहीं समझ सकता, इसलिए फरमाया जो कहा वो मान लो, जो कहा वो मान लो, और अगर समझने जाओगे तो मौत तक इस हुक्म की वजह समझ में आएगी नहीं और तुम शक में रहोगे, तो फिर इसी हाल में मौत आ गई तो ईमान खतरे में है, क्योंकि अभी हमारे समझ में ना, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जकात, भाई जकात से शरीयत कह रही है कि माल बढ़ता है और सूद से माल घटता है, तो अब अकल तो कहती है कि जकात से माल घटता है, कम होता है, और सूद से माल बढ़ता है, अब शरीयत क्या कहती है और अकल क्या कहती है? तो अब वो अकल में शरीयत की बात आने वाली ही नहीं है, मान लो तो कामयाब है। अब जैसे बकरे का, बोले जबह करके खाओ तो हलाल और मुर्दा है तो हराम, अब अकल कहती है कि भाई यहां भी मारा है तो मरा हुआ है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, अरे खा लेना चाहिए, ये भी तो मारकर खा रहे हैं, ये मरा हुआ है तो इसका भी गोश्त खाना चाहिए, इसका भी गोश्त खाना है। लेकिन नहीं, अब ये ऐसी शरीयत है कि तुम कितना भी अकल दौड़ाओ हमारे अकल में आ ही नहीं सकती। शरीयत का हुक्म बड़ा, हमारी अकल छोटी। तो हर हुक्म शरीयत का अकल में नहीं आ सकता। और हम चाहते हैं आज का जो जमाना है वो कह रहे हैं कि भाई हमारी समझ में आवे, हमें वजह बताओ फिर हम समझेंगे। आज का दौर वजूहात का बहुत है, इसलिए जिसको देखो वो बात करेगा तो अपने बात का मतलब ऐसा पेश करेगा कि हमारी समझ में आ जावे। ये आजकल का बात करने का अंदाज भी वही है। और हाँ, कि अकल में तुम्हारे बिठाने के लिए वो लंबी तकरीर करेगा। अरे बाबा जो कहना है वो एक मिनट में कह दो, वो दस एक मिनट की बात को समझाने के लिए 10 मिनट ज्यादा लेगा। क्योंकि आज का दौर है समझाने का, भाई जहां समझाने की जरूरत है वहां समझाओ और जहां बात करने की जरूरत है वहां बात करके खत्म हो जाओ। अब समझना है तो सवाल पूछो। तो बात यह है कि हकीकत में मानने का जज्बा नहीं रहा, इसलिए समझाया जाता है। और शरीयत ने पहले कह दिया कि हम अपने बड़ों की मान लो। अब उन्होंने जो हुक्म दिया है वो मत पूछो कि क्यों, जब क्यों पूछने जाओगे तुम गिर गए। मां बाप ने औलाद से कहा कि काम करो तो क्यों मत पूछो, कर लो। क्योंकि मां बाप कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते। मां बाप का हुक्म, हां अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन राय के बाद भी उन्होंने कहा कि हमारा यही हुक्म, बस मान लो उसी में ठीक है। लेकिन आज हर एक अपनी अपनी अकल दौड़ाता है। तो मसलन बहुत सी चीजें हिस्से बसर से दरियाफ्त करने के काबिल है, मगर अंधों को इदराक नहीं हो सकता। यानी दिल की आंख से समझने के काबिल है, लेकिन हम तो दिल के अंधे हैं, तो हमें कैसे, ये अकल वाले का काम है कि अहकाम की इल्लत को समझ ले। ये अकल अंबिया अलैहिस्सलाम, औलिया कामिलीन और उलमाए रासिखीन, पक्के उलमा को अता होती है ये अकल, जो वो समझ सकते। अवाम की अकल में इस कदर कुव्वत नहीं है, और कोई डिग्री या पास कर लेने से जुमरे अवाम से खारिज नहीं हो जाता है। यानी अगर कोई आदमी ने कोई इंजीनियर की डॉक्टर की डिग्री ले लिया तो क्या वो अवाम से निकल गया, यानी उसकी अकल इतनी बड़ी हो गई कि वो सब कुछ समझ सकता है? आज तो डॉक्टर की डिग्री लेकर कुरान की तफसीर शुरू कर देते, भाई डॉक्टर साहब तफसीर कर रहे, अरे इसकी अकल में कुछ है ही नहीं अभी, तो क्या करेगा ये तफसीर। जो भी डॉक्टर बना दो बोले तफसीर शुरू कर दो। अब वो सब के सब जिन, और वो भी तफसीर शुरू करेंगे तो वो नहीं जो लिखा हुआ है, अपनी अकल दौड़ाएंगे। तो ये देखो साफ कह दिया कि अकल तो उसकी कामिल है कि जो औलियाए कामिलीन होते हैं या उलमा जिनके पास सही इल्म है, फरमाया या अंबिया की अकल होती है, तो वो लोग समझ सकते हैं बातों को, और वही लोग कुरान की तफसीर करेंगे तो असल मफहूम समझ में आएगा। और ये के मुराद उसे दीन के उसूल है कि वो अकली है, यानी जो कुरान शरीफ और हदीस शरीफ को भी न मानता हो उसको तौहीद रिसालत की तालीम दलील अकली से मुमकिन है। रह गए फुरू, मसलन फुला चीज हराम क्यों है, फुला चीज हलाल क्यों है, उसका अकली होना बेईमाना जरूरी नहीं। समझे, जैसे अभी ढूंढना भाई हराम क्यों है, अब इसका अकल में मानना जरूरी नहीं है। तौहीद और रिसालत ये तो जरूरी है कि अल्लाह एक है, उसको तो हम समझा सकते हैं, उसके दलाइल पेश कर सकते हैं, उसको अकल में और समझ में आना जरूरी है, फिर वो अल्लाह को एक मान ले। लेकिन बाज ऐसी चीजें हैं जो फुरूई चीज है, जैसे हलाल और हराम की, तो उसमें अकल लगाना जरूरी नहीं है, बल्कि उसको दलील शरी से मान लेना चाहिए। और अकल के मुआफिक भी यही बात है कि हाकिम को हाकिम मानने के लिए जितनी दलीलें चाहिए कर ली जाए। जब हाकिम होना तस्लीम कर लिया फिर उसके हर हुक्म में हुज्जते तलाश करना सरी बगावत है। कितनी बेहतरीन बात, यानी एक मुल्क का कोई हाकिम हो, प्राइम मिनिस्टर हो, तो उसको भाई ये है, ये बना है, मुझे दलील से समझाओ। उसने समझा, भाई देखो ये है उसके पास, ये है ये, अब हमारी समझ में आ गया कि हाँ ये हाकिम है अपने मुल्क का। अब जब हाकिम मानना दलाइल से समझ में आ गया, अब उसका हर हुक्म मान लो, अब उसके हर हुक्म में अकल दौड़ाना जरूरी नहीं। اسی طریقے سے ہم نے اللہ کو تو مان لیا کہ واقعتاً یہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو اللہ کو جب مان لیا ہے تو اب اس کے جتنے احکام ہیں اس کے اندر عقل دوڑانا ضروری نہیں, مان لینا چاہیے. جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس کو دلائل کے ذریعے سے اللہ تو منوا لیا جائے کہ ہاں بھائی یہ اللہ ہے, اب میں اللہ مان لیا, کلمہ پڑھ لیا. لیکن اب تم کہو کہ ہر ہر چیز میں مجھے عقل کے ذریعے سے سمجھاؤ تو پھر یہ نہیں, پھر اس کے حاکم کی ہر بات کو مان لینا چاہیے. ہائے 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 اللہ. تو فرمایا عقل کے موافق بھی یہی بات ہے کہ حاکم کو حاکم ماننے کے لیے جتنی دلیلیں چاہیے کر لی جائے. جب حاکم ہونا تسلیم کر لیا پھر اس کے ہر ہر حکم میں دلیلیں تلاش کرنا یہ تو بغاوت ہے, بغاوت. یعنی جب اللہ کو تسلیم کر لیا, ایمان لے آئے, تو پھر اس کے ہر حکم کو مانا جائے, وجہ اور علت نہ تلاش کی جائے. کیونکہ دنیاوی قوانین کی علت دنیاوی قوانین کی علت وجہ لما ہماری سمجھ میں نہیں آئی, پھر بھی ہم مانتے ہیں. یعنی ہمارا جو بھی ملک کا حاکم ہے اور وہ جو قانون پاس کرتا ہے وہ قانون ہماری عقل میں نہیں آتا, پھر بھی ہم مانتے ہیں. کیوں کہ یہ پاس کرنے والا جو حاکم ہے اس کو جب مان لیا ہے تو اس کی ہر بات کو ماننا ہے, اور اس کی بات کا انکار کروں گے تو قانون تم بھی پکڑے جاؤ گے, شریعت کے اندر بھی پکڑے جاؤ گے. غرض حکم شریع کو بلا نزا مان لینا واجب ہے. ہاں, ماننے کے بعد تحقیق حکمت کے لیے بطور استفادہ کے اگر غور کیا جائے تو وجہ بھی نکل آتی ہے. بعض لوگ زبردستی کی ضرورتیں تلاش کر لیتے ہیں کہ ہم نے مکان کی حفاظت کے لیے کتا پال رکھا ہے, لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ تو ارادہ اور نیت کو دیکھتے ہیں. اگر خاص مقصد تفریح سے پالتے ہیں, یعنی ویسے ہی پالا ہے, تو اجازت نہیں ہو سکتی صرف کتے سے. تو حفاظت وہ کرے جس کے پاس نوکر, ملازم, دربان, پہرے دار نہ ہو. جب ماشاء اللہ ایک کام کے لیے متعدد نوکر ہے تو کتوں کی کون سی ضرورت رہ گئی. تو اسی طرح شکار کا پورا سامان بندوق ہے تو پھر کتے کیوں پالتے ہیں. جب پورا سامان ہے پھر کتے کی ضرورت نہیں, کتا تو وہ پالے اس کے پاس سامان نہ ہو. جیسے آج کل سیکیورٹی ہے تو اس کا الارم لگا دو تو یہ کتے کا بدل ہو گیا, تو پھر کتا پالنے کی کوئی شریعت نے اجازت نہیں دی. تو اپنا سیکیورٹی رکھو, اس کا الارم رکھو, تو پھر کتا پالتے کیوں ہیں. جی یہ حضرت تھانوی کی بات ہے سب. اللہ اکبر. اب تصویر پر بات چل رہی تھی, کتے پر بات چل رہی تھی. تصویر کا شرعی حکم, تصویر بھی اس میں آ گئی تھی کہ تصویر رکھنے والے کی بھی کھینچنے والے, کھینچوانے والے, اس میں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں. بعض لوگ تصویر کے سلسلے میں کہتے کہ ہم تو پوری تصویر نہیں بناتے اور نہیں رکھتے, بلکہ صرف گردن تک ہوتی ہے. جب تصویر میں ایسا عضو کم ہو جائے جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں تو ایسی تصویر جائز ہوتی ہے. بعضوں نے یہ نکالا. اصل یہ ہے کہ عضو کے کم ہو جانے سے حرمت اس لیے نہیں رہتی کہ وہ تصویر نہیں معلوم ہوتی, بلکہ جھاڑ یا درخت وغیرہ معلوم ہونے لگتا ہے. اور چہرہ تو تمام تصویر کی ناک ہے, جب یہ باقی ہے تو بس پوری تصویر کے قائم مقام ہے اور ہرگز اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. اور بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ روپیہ رکھنے کی کیوں اجازت ہے, جیسے ابھی آئی تھی بات روپیے کی تصویر کو کیا کرے. دیکھو اس کا جواب, بعض لوگ اعتراضاً کہتے کہ روپیہ رکھنے کی کیوں ضرورت ہے, اس میں بھی تصویر ہے, پھر اس کو کیوں اجازت ہے جبکہ اس پر بھی تصویر ہوتی ہے. تو جواب سنیے. جواب یہ کہ روپیہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے, ضرورت میں تنگی کم ہو جاتی ہے, اور یہ خاص اور یہ لوگ محض زینت اور آرائش کے شوق میں تصویر لگاتے. جو گھروں میں تصویر لگاتے وہ شوق میں لگاتے, اور جو پیسوں میں تصویر وہ ہمارا شوق نہیں ہے اور وہ ہم نے لگائی بھی نہیں ہے اور وہ ہماری ضرورت بھی ہے, اس کے بغیر نقصان ہوتا ہے, تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اس لیے تو کہا یہ اور کہا وہ, تو پھر اس لیے اس تصویر کی اجازت ہے. اس لیے پیسے اگر جیب میں ہے تو پھر نماز جائز ہوگی, ورنہ وہ تصویر جیب میں ہے بولے. जिस घर में कुत्ता, सुअर, खिंजीर, शराब, जिस घर में कुत्ता, सुअर, शराब, जानी या जानिया या तस्वीर हो, उसमें फरिश्ते रहमत का दाखिल नहीं होता। जी, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए हमेशा पाक रहना चाहिए और घरों को भी पाक रखो। नापाक रहने से रहमत के फरिश्ते नहीं होते, हमारी हिफाजत नहीं करते, और घरों में भी नापाकी होने की वजह से रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इसलिए घरों को पाक रखना, खुद भी पाक रखें, और ये तो जिस्म और जाहिर को पाक रखा, फिर दिलों को भी पाक रखेंगे तो फिर फरिश्ते तो क्या, फिर अल्लाह भी आ जाएगा दिल में। तो जाहिर को पाक रखने से तो फरिश्ते तो आ जाएंगे घरों में, लेकिन अल्लाह को भी अगर घर में रखना है तो फिर दिलों को भी पाक कर लो, क्योंकि हमने जिस्म तो पाक होता है लेकिन दिल हमारा नापाक होता है। तो दिल नापाक होने की वजह से फिर अल्लाह नहीं आएगा। तो दिलों को पाक करेंगे और फिर घरों के अंदर रहने वाले सबके दिल पाक हो गए तो फिर उस घर में तो अल्लाह हर वक्त होंगे, फिर उस घरों की मजा ही कुछ और होगी। फिर इस घरों में बीमार भी आ जाएगा तो वो भी सेहतयाब होगा, और जिन्ना तो दूर तक भी देखेगा नहीं, बोले यहां तो हम आ ही नहीं सकते, वो तो दूसरों को भी कहेंगे कि इनके पास जाना ही नहीं वरना पिटाई जबरदस्त हो जाएगी। हाँ, फिर वो जिन्ना तो शयातिन भी भाग जाएंगे, फिर वो सहर और जादू भी भाग जाएगा, सब भाग जाएंगे। जी, और आगे सुनिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक नकल फरमाते हैं कि जिसने इल्मे नुजूम के हुसूल में से कुछ हिस्सा जो कि शरीयत के खिलाफ हो हासिल किया तो गया उसने जादू को हासिल किया। नुजूमी काहिन है और काहिन जादूगर है और जादूगर काफिर है। नुजूमी जो होते हैं, इल्म नुजूम, सितारों का इल्म, एक तो रास्ता देखने के लिए, और एक सितारों का इल्म शयातीन के अमल को करने के लिए। तो अगर किसी ने नुजूम का इल्म, सितारों का इल्म शरीयत के खिलाफ लिया है, हाँ, तो गोया उसने जादू को हासिल किया। कैसे? क्योंकि नुजूमी उन सितारों के जरिए से वो काहिन बनते। काहिन यानी गैब की बातों को बताते। हाँ, और काहिन क्या होता है? वही जादूगर है, और जादूगर काफिर होता है। जादूगर मुसलमान नहीं हो सकता, ये याद रखना। और अगर मुसलमान है और जादूगरी करता है तो समझो अंदर से इस्लाम निकल चुका है। जी, घरों में खिलौने के नाम से भी तस्वीरें आ जाती है, तो ऐसे खिलौने घर में न लावे, और ऐसे लावे जिसमें तस्वीरें न हो। और अगर तस्वीरें स्टिकर के जरिए से लगाई गई तो इस खिलौने से स्टिकरों को निकाल दिया जाए, और अगर ऐसी है जो उसमें चिपकी हुई है तो उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें लगा दी जाए कि तस्वीर न दिखाई देवे। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि खिलौने के जरिए भी बहुत सारी तस्वीरें आ जाती हैं। तो देखा, नजूमी काहिन होता है, काहिन जादूगर होता है, और जादूगर काफिर है। और आज अल्लाह अल अमान वल हफीज, जिसको देखो जादूगरों के पास जा रहा है, उससे हमारी थोड़ी अनबन हुई, उससे जादू करा दो, उससे जादू कराने वाला भी मशकूक हो जाता है, क्योंकि एक मुसलमान के ऊपर तो जादू करा रहे हो। क्या इतना हसद और इतना बुग्ज, इतनी दुश्मनी बढ़ गई कि अब नहीं ले सकते हैं तो जादू का सहारा लेते। याद रखे, जादू तो उस पर करा दूंगे, लेकिन हम भी कराने वाला और कराने वाले की औलाद भी मौत तक सुखी नहीं रह सकती। हाँ, क्योंकि उसने बिला वजह किसी को तकलीफ पहुंचाई, वो तड़प तड़प रहा है, और तुमने उसको जादू तो कराओगे तो जादू तो लगेगा, वो तो लगेगा, वो तो नबी तक को भी लगा है, तो क्या हम नहीं लगेगा? लेकिन ये देखो कि ये कराने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता। अगर इस्लाम बाकी है तो उसको अल्लाह का खौफ नहीं है कि किसी भी ईमान वाले पर जादू करा देते, बल्कि किसी पर, गैर मुस्लिम पर भी हमें कराना जायज नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन सहारा फकत अशरक, जिसने जादू किया उसने शिर्क किया। जादू वगैरह तमाम शिर्क कुफ्र की ही शाखे है जो बिल्कुल हराम है, और फरमाया मुशरिक की मगफिरत नहीं होती। जिस तरह जादू करना हराम है ऐसे ही जादू कराना भी हराम है। जादू करना भी हराम, जादू कराना भी हराम। आज हमें करना तो नहीं आता है लेकिन कराने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं और हम उनके पास जाते हैं और उनकी कमाई उसी से होती है, और ये तो इतना आम हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। इसलिए याद रखे, आजकल अवाम तो क्या बाज खवास भी इस मोहलिक मर्ज में मुबतला हो जाते हैं, यानी या तो जादूगर बनते हैं या जादू करवाने वाले बनते हैं। ये देखो क्या फरमाया, अवाम तो अवाम खवास भी इस बीमारी में मुबतला हो जाते हैं, जहां किसी से कोई दुश्मनी हुई या और कोई बात हुई तो उसका सहारा लेते कि जरा उस पर जादू कर दो, और अपनी दिली भड़ास निकालने की कोशिश करते हैं। और औरतें भी इस मर्ज में बहुत ज्यादा मुबतला है कि जरा सा कोई खिलाफ मंशा काम हुआ तो उसकी तरफ दौड़ती है, जबकि वईदे सामने हैं और इस किस्म के तावीजात वगैरह जिनमें किसी मुसलमान को या किसी भी इंसान को तकलीफ हो नाजायज और हराम है। तो अब बताओ, अब ऐसे लोगों की कैसे मगफिरत होगी इस मुबारक रात में, लैलतुल कदर में, रमजान के महीने में कैसे मगफिरत हो सकती? अरे वो तो पूरी जिंदगी परेशान रहेंगे जिन्होंने जादू किया या जादू करवाया। जिस पर जादू हुआ है अल्लाह उसको तो बख्श देंगे, इसलिए कि उसको तो तकलीफ हुई है, वो तो बर्दाश्त कर रहा है, उसके तो गुनाह माफ हो रहे हैं, उसके दर्जात बुलंद हो रहे हैं, अल्लाह उसको तो जन्नत में भेज देंगे। लेकिन जो करवाने वाले हैं उनकी औलाद बर्बाद होगी। हो सकता है उसको अल्लाह शिफा भी दे दे, जैसे नबी अलैहिस्सलाम पर भी जादू हुआ लेकिन अल्लाह उनको शिफा दे दी। क्या करे, आजकल जादू का जमाना बहुत है। ये यानी शहर से लड़ाई होती है, यानी जादू की वॉर चल रही है, जादू की वॉर चल रही है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, कहां हथियार है कुछ भी नहीं है, बस उस पर कर दो और उसको तड़पा दो ताकि वो उसकी ताकत, उसका माल और उसकी बीवी बच्चे सब बर्बाद हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आम है आम, इन तमाम चीजों से बचना चाहिए। और जो इस किस्म के काम करते हैं वो भी सख्त गुनेगार है, और उस पर उजरत लेना और देना दोनों ही हराम है। ये तो कमाई का जरिया बन गया है, हाँ कमाई का। जादू सीखते हैं बाकायदा, और जादू सीखने के लिए आसान काम थोड़ी है, जादू सीखने के लिए पहले इस्लाम को छोड़ना पड़ता है, हाँ जादू सीखने के लिए पहले नापाक रहना पड़ता है, हाँ जादू सीखने के लिए पता नहीं क्या क्या अल्फाज बकने पड़ते हैं जो इस्लाम के खिलाफ होते हैं, आसान थोड़ी है। तो ये जादू से कुछ नहीं होता, एक वो जादू सीखो जो मुसख़र करते हैं, अल्लाह वालों के पास मिलता है, वो भी एक चीज सिखाते हैं कि वो भी किसी पर जादू कर देते हैं, वो एक नजर लग जाती है और उसकी दुनिया उसकी उसका पलट जाता है और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, वो सीखो। उसके जरिए से लोगों की दुआएं मिलती है, लेकिन वो नहीं सीखते। वो तो सीखना जायज नहीं, वो तो आईने ईमान है, वो तो सीखना चाहिए। लेकिन वही कहा कि आज हम लोग कहां चले गए, फिर दुनिया में अगर ऐसी मुसीबतें ना आए तो और क्या होगा, क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। चलो आज भी पूरी नहीं हुई, वो कौन सी बातें हैं जिससे इंसान के उस रात में भी मगफरत नहीं होती, तो उसमें तस्वीर और इल्म नुजूम और कुत्ते का शरी हुक्म, टखनों से नीचे पाजामा। बस इंशाल्लाह दूसरा कल इसको पूरा करेंगे, मुकम्मल करेंगे। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.